और हाँ, ड्राइंग रूम होगा यहाँ पर। अच्छा, दो बेडरूम यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, यहाँ झील के सामने, और एक बेडरूम यहाँ पर पहाड़ के बिल्कुल सामने।
हमें तीन बेडरूम किस मकसद से चाहिए?
ये दो हमारे उन दो बेटों के लिए है, वो भी तो अम्मी की लाडली प्यारी बेटी के लिए है। किस चीज का बहाना मायदा? क्यों मैं जो कुछ भी कहता हूँ तुम उसे बहाना कहती हो? मुझे बताओ तो सही।
को छोड़ोगे? एक घंटे के बाद मेरा इंटरव्यू है और अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे क्या कहना चाहिए।
अच्छा, तुम क्या कहना चाहती हो?
क्या बताइए कि इसमें कितने विलाज को तुमने पेशगी तौर पर फरोख्त कर दिया है, या कि तुम्हारे कितने मजदूर हैं?
कोई बात ही नहीं है। देखो, पेशगी फरोख्त होने वाले विलाज, देखो अब्बू हैं, देखो पेशगी फरोख्त किए गए विलाज, क्योंकि इस वक्त हम दोनों बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारी मालूमात
बुरी बात है मोहम्मद हुसैन, जवाब दो।
ठीक है। हेलो, हेलो जी, आगा साहब, सलाम अलैकुम। जी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, अभी आ जाऊं? जी जी सर, आंखों पर लो, तुमसे कह रहा था ना जवाब ना दूं, इसीलिए ना, जब अब्बा हुसैन कुछ कह देते हैं तो मैं उनको ना नहीं कह सकता हूं। मेरे भी बहुत से काम बाकी हैं।
हाँ, तुम जाना चाहते हो? अच्छा, तुम चले जाओ, मैं खुद इंजीनियर से बात कर लूंगी।
फिर जो तुम कह रही थी बार बार कि मुझे मालूमात चाहिए, मुझे मालूमात चाहिए,
मत बड़बड़ाओ तुम।
अहमद अली साहब, तशरीफ लाइए।
हुक्म फरमाइए हाजी साहब।
अहमद अली साहब
जनाब,
इन बड़े फलों को ऊपर और छोटों को नीचे ना चुने, बुरी बात है, हम लोगों को धोखा नहीं देना चाहते।
जनाब, मैं इनकी खुद निगरानी कर रहा हूँ, सब एक तरह से है, कौन सा ऐसा था?
बहरहाल ये फल कुछ हद तक खोखले हो गए हैं, हमें दरख्तों के नीचे नाइट्रोजन खाद डालनी पड़ेगी।
जी मैं कर दूंगा।
सलाम अहमद अली साहब। सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
ठीक हो मेरे बेटे?
जी बहुत शुक्रिया।
काम कैसा है?
आपने कहा था कि मैं कंपनी को बंद कर दूं, मैंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता ना।
दरअसल जो बात मुझे कहनी चाहिए थी मैंने तुमसे कह दी।
हाजी साहब, जरा चलते हैं अली आगा के पास, बाग का हिसाब किताब कर लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी, उनको आदत है।
उस बंदे खुदा का हिसाब एक एक पाई करके सही रहा है ये।
अरे जनाब, आपका यही बंदे खुदा सर घुमाते ही हिसाब किताब में गड़बड़ कर देगा। आइए।
अब्बा हुजूर, मैं कंपनी जा रहा हूँ, आपको मुझसे कोई काम है?
इस डिब्बे में फल भर दो और जाकर अपनी सास को दे दो, बस।
अभी हाजिया खानम के रस्म के फल पड़े हुए हैं।
नहीं नहीं नहीं, ये फल उसके वालिद के हैं, वो खा लेगी, अच्छा रहेगा। जाओ बेटा जाओ।
ये सारे फल किसके लिए लाए हो?
सलाम।
सलाम।
गुलशनाबाद के बागों के फल हैं। अब्बा हुजूर ने माफ कीजिएगा, अब्बा हुजूर ने कहा लाने के लिए।
मायदा ने खुद को तैयार कर लिया है।
किस लिए?
आज के इंटरव्यू के लिए भाई।
आपको कैसे मालूम हुआ?
क्या तुमने नहीं चाहा था कि माँ की हैसियत से मायदा के लिए मैं कोई काम करूँ? अलबत्ता अगर कर सकूँ तो।
आपने इंटरव्यू का एहतमाम कराया है? मैंने सुन रखा था कि आप बहुत तेज तर्रार हैं। हम पूरी जिंदगी यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन ना कोई हमसे कुछ पूछता है, ना किसी को हमारे बारे में कुछ पता है। आपको तो दो दिनों में सब कुछ पता चल गया।
नामा निगार लड़की मेरे पास आई थी एक कामयाब शहरी की हैसियत से मेरे साथ गुफ्तगू करने। मुझे पता नहीं है क्यों, लेकिन एकदम से मैंने सोचा इससे कहूँ कि मैं और मायदा मिलकर इंटरव्यू देंगे, मायदा एक कामयाब लड़की के तौर पर।
मैं क्या बताऊँ, पता नहीं मायदा का क्या रद्द अमल होगा।
मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये वाहिद बात थी जो एकदम से मेरे जहन में आई, शायद इस तरीके से हम दोनों आपस में बात कर सकें।
आपकी मेहरबानी, इंशाल्लाह की हो सके।
तुम्हारी भी मेहरबानी अच्छे लड़के। अच्छा है जो मायदा का ख्याल रखते हो।
मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
सलाम, सलामत रहें हुदा खानम।
यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना।
आप तशरीफ ले जाकर जोहरा को आवाज देंगे कि वो आ जाए?
दरवाजे पे खड़े रहना अच्छा नहीं है।
नहीं, बात यह है कि देर हो जाएगी, हमें जाकर शादी का कार्ड लेना है आज। माफ कीजिए, मैं तारुफ करवाना भूल गया, ये सईद साहब हैं, ये हुदा खानम जोहरा की बहन।
सलाम।
सलाम।
सईद साहब हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं।
सलाम अलैकुम।
सलाम।
सलाम बेटी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ।
आपकी मेहरबानी, मैं मशकूर हूँ। जोहरा बेगम कहाँ रह गई?
वो आ रही है, दरवाजे पर खड़े रहना ठीक नहीं।
मोहतरमा, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपको जहमत दी हो।
सलामत रहो बेटे।
कह दीजिए कि आ जाएं, हमें जल्दी जाना है।
जरूर
जी,
चलो अंदर जाओ।
सलाम। सलाम।
दाऊद से कह दो जिस घर में लड़की हो वहाँ किसी कुंवारे लड़के को ना लाया
करे। ठीक है, खुदा हाफिज।
सुनो, अगर मैं एक काम बोलूंगा करोगे?
कौन सा काम?
तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं आएगा, वो देखो। अरे कितना अच्छा
हाथ मत
है।
लगाओ।
अरे ऐसा लगता है मैं खा जाऊंगी क्या?
देखिए तो
ले लो।
ये क्या है?
आपके लिए है। अच्छा रुको, पैसे देती हूँ इसके।
नहीं, एक आदमी ने पैसे दे दिए हैं, और ये आपकी दोस्त के लिए।
अरे इसको छोड़ो, जरा उसको दिखाओ। इन सबको छुपा के रखा है, इसका क्या मतलब है? तुमने देखा उसको?
हाँ,
मैं तुमसे बोल रही हूँ।
तुम हो कहाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
कुछ नहीं, यहीं पर हूँ। लो देखो।
सलाम। ओहो जोहरा, तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ?
ये सईद जो दाऊद का रिश्तेदार है, ये बहुत पागल है।
ये तुमने क्या किया पगली?
तो क्या हो गया?
तुमने पार्क में जाकर उस अजनबी लड़के के साथ अटखेलियां खेली। अम्मी को पता चल गया है, उन्होंने मेरे साथ लड़ाई की है।
वो लड़ पड़े?
ये दाऊद की गलती है, अगर काटो तो खून ना निकले। तुम पागल हो।
अम्मी कहाँ है?
टेलीफोन पर बात कर रही है।
खुदा की कसम, उसने खुद मुझे छेड़ा है।
उसने तुम्हें छेड़ा और तुमने जाके उसके साथ हंसी मजाक शुरू कर दी। खुदा मेरी जान, खुदा की कसम तुम गलती कर रही हो। जब पछताओगी तो देर हो चुकी होगी। कहाँ जा रही हो?
मैं तहखाने में छुपने जा रही हूँ, उन्हें मत बताना मैं आ गई हूँ।
बताऊंगी पर उससे क्या होगा?
मुझे नहीं पता, पर आया अभी हूँ कि सामने जाना ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ।
मत जाओ।
उसने अभी हमारी नाक काट दी है। इस छोटे से शहर में जरा सा कुछ होता है तो सबको फौरन पता चल जाता है।
तुम खुद देख लो, वो कितनी बच्ची है कि उसकी अक्ल में ये बातें नहीं आ रही हैं।
बच्ची के साथ ऐसा करना चाहिए ताकि वो इंसान बन जाए।
तुम ये चाहती हो कि बच्ची मुकम्मल तौर पर इस्तराब में रहे और सिर्फ इताअत करे? तुम मुझे मौका दो, मैं खुद उससे बात करता हूँ, देखता हूँ मसला क्या है।
ये बात सब में उड़ गई है और तुम बोलते हो कि देखता हूँ कि क्या होता है।
सलाम।
अलैकुम सलाम।
सईद मेरा रिश्ता मांगने आना चाहता है।
बहुत बेशरम हो गई हो हुदा। मैंने अपनी पूरी उम्र में तुम्हारे अब्बू और अपने बाबा के अलावा किसी का भी नाम साहब लगाए बगैर नहीं लिया है, बेशरम लड़की।
वो भी तो मेरा शौहर बनना चाहता है, मैं भी उसके बाद सिर्फ सईद का नाम लूंगी और अपने अब्बा का।
क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि तुम अपना मुस्तकबिल खराब कर दो? तुम अपने स्कूल की बेहतरीन पहली पोजीशन लाने वाली तालिबा हो।
मैं शादी भी करूंगी और पढ़ाई भी जारी रखूंगी।
तुम इस घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती हो और अब जाकर शादी करना चाहती हो।
बहुत सोने शादी भी की है और पढ़ाई भी जारी रखी।
ऐसे शख्स से शादी करो जो माकूल आदमी हो, ना कि ऐसे शख्स से जिसकी ना कि माँ का पता हो, ना ही बाप का, और ना ही किसी खानदान का हो।
तो क्या आपने उससे बात की है जो कह रही है माकूल आदमी नहीं है?
ऐसे मालूम लगता है जैसे दाऊद के खानदान का हो। तुम्हें बताया किस खानदान से है?
मुझे उसके खानदान से कोई मतलब नहीं है। सईद अच्छा लड़का है और मुझसे प्यार करता है।
ये बात कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, ये खुद उसने कही है या तुम्हारी अपनी राय है?
कहा है? नहीं कहा है, लेकिन वो चाहता है।
तकरीबन 6 साल पहले मैं उस वक्त 13-14 साल का था।
उनके अलहदा होने की वजह क्या थी?
बहुत से औरत मर्द जो आपस में राय नहीं रखते वो तलाक ले लेते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ।
3 बच्चों के होते हुए?
जी हाँ।
तो तुम खुद किसके साथ रहते थे, अपने वालिद के साथ या अपनी वालिदा के साथ?
हाजी साहब, मैं अपने वालिद के साथ रहता था।
अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी भी की इन सब हालात के बाद?
जी नहीं।
अच्छा, तो ये बेहतर नहीं होता कि तुम उनको भी बता देते और दोनों एक साथ चले आते?
जी, मैंने सोचा कि पहले मैं खुद आ जाऊं, आपसे बात कर लूं, फिर उनको आपके पास लेकर आऊं। आपका कर्म है, शुक्रिया।
बहरहाल वो तुम्हारे वालिद हैं, उनकी अपनी राय भी हो सकती है।
जी हाँ हाजी साहब, लेकिन उनको मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे आकर खुद बात कर लूं, उसके बाद उन्हें बता दूंगा। आप परेशान ना हो हाजी साहब, मैं आपकी बेटी को खुश रखने के लिए हर तरह की कोशिश करूंगा।
बेटे, तुम्हारा काम क्या है?
पहले एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा और उसके बाद मैं अलग से दूसरे काम भी करूंगा।
अंसारी साहिबा, सलाम।
सलाम।
अगर कहीं जाना है तो पहुंचा देता हूँ।
अब तो सबको मालूम है मैं यहाँ हूँ, लिहाजा जरूरी नहीं कि वक्त तय करो कि मैं कब कहाँ पहुँचूंगी।
आप यकीन कीजिए, हाजी साहब की ताकीद थी कि
मुझे जाना है,
आप
मुझे काम है।
अरे अरे सुनिए सुनिए, एक मिनट, ये आपको मैं देना चाहता था, इसमें जरूरी कागजात और सनद वगैरह है। ये हाजी खानम के घर के हैं, उन्होंने कहा है कि आप एक नजर इनको देख लीजिए।
जरूरत नहीं,
देखिए अगर मैं इन्हें वापस ले गया तो हाजी साहब मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया, मैं यहाँ रुकता हूँ, आपको लेकर जाऊंगा, जैसा आप मुनासिब समझे।
खुदा साहिबा, अगर मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो यकीन करो कि मैं आगे कदम नहीं बढ़ाता। तुम जो कहती हो मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारी जो ख्वाहिश है पूरी करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सब अंजाम पाए, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, तालीम जारी रखूँगा। जरा एक मिनट रुको, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रही हो?
मैं क्या कहूँ?
तुम क्या करना चाहती हो?
अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हारे सलाम का जवाब भी ना दे।
तो फिर इस मसले को किसी तरह हल करो।
मेरे अब्बा को भी हक पहुंचता है, मैं उनकी बात को टालना नहीं चाहती हूँ।
तुम अब बताओ मैं क्या करूँ, जो कहोगी मैं वही काम करूँगा।
सईद, तुम जाकर अपनी तालीम जारी रखो, जब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाए तो आके मेरे साथ निकाह करो।
4 साल के लिए छोड़ के चला जाऊँ? तुम संजीदा हो हुदा? पागल हो जाऊंगा, इन 4 बरसों में 1000 किस्म के वहमो गुमान में मुब्तला हो जाऊंगा।
तुम वहमो गुमान छोड़ो, अपनी तालीम में लग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
अगर नहीं किया तो?
मैं कह रही हूँ ना करूंगी, तब तक तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी।
लेता है, लेकिन अगर
सलाम
सलाम आओ चले।
तुम कौन? आप जाइए।
तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा
आप जाइए भाई। अरे
छोड़ दो, या फिर कभी दिखाई मत देना। हाजी साहब, आप यहाँ हमारे बाप की तरह हैं।
नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम जाओ।
जी कोई बात नहीं,
इंशाअल्लाह खुदा आपके लिए महफूज रखे, खुशकिस्मत हो जाए, आप सलामत रहे, बुढ़ापे की ज़िंदगी ना महसूस करें। खुदा की एजाज में।
खुदा खुदा बाहर आ जाओ, खुदा बेटी बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारे अब्बू क्या कहना चाहते हैं।
मैं पढ़ रही हूँ।
बेटी बाहर आ जाओ, अब्बू बुला रहे हैं।
क्या हुआ?
मैं जा रही हूँ उसको लाने के लिए।
नहीं आ रही है?
हाँ। मैं वारी जाऊं बेटी, तुम तो इस हालात के साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकती हो।
तो फिर मैं क्या करूं?
उठो बेटी उठो, अपने अब्बू के साथ बात करो।
मैं कई सालों से हाजी रजा को जानता हूं, मैं खुद भी उनको जानता हूं और तुम्हारी माँ उनकी माँ को। अच्छा घराना है। जलील ने भी जब हाई स्कूल पास कर लिया बाजार आ गया, वो अपने बाप का हाथ बटाते हुए काम करने लगा। मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी, वो अपने काम में मग्न है, उसका बाप भरोसा करता है उस पर। अब अगर तुम वाकई शादी करना चाहती हो तो मेरी नजर में वो बेहतरीन आदमी है। अब अगर शादी ना भी करना चाहो तो बहरहाल तुम्हें इख्तियार है, मैं तुम्हें किसी काम पर मजबूर नहीं करूंगा।
अगर मुझे इख्तियार है तो अभी उनको रिश्ता मांगने के लिए आने क्यों दिया? मतलब आप लोग मेरी शादी करा के मुझे भेज देना चाहते हैं?
हाजी रजा की बीवी 7-8 महीने से तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। मैंने सोचा तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम शादी करना चाहती हो तो मैंने बुला लिया।
अगर मैं जाहिरी तौर पर फैसला करना चाहूँ तो लड़का बुरा नहीं है। अब इंसानों के बातें का तो सिर्फ खुदा को मालूम है।
अब्बा मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ।
बताओ उसकी वजह क्या है?
मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
उसको कैसा होना चाहिए कि तुमको अच्छा लगे?
मुझे मालूम नहीं मैं कैसे कहूँ ताकि आप मुतवज्जे हो सकें। मैंने और सईद ने आपस में बात की
है। तुम दोनों को बात नहीं करनी चाहिए थी।
यानी मैं ऐसे आदमी की बीवी बन जाऊँ जिसे मैं नहीं जानती?
जोहरा भी नाखुश है, किसी ने हमसे मुतारिफ कराया। दाऊद और उसके घर वाले हमसे रिश्ता मांगने आए।
मैं वैसी नहीं हूँ।
मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे बाप हैं। हम तुम्हारी मसलिहत को समझते हैं या कि तुम जिसके मुंह से अभी दूध की बू आती है।
खुदा की कसम मैं कुछ कर बैठूंगी।
मुझे धमकाओ मत खुदा।
लीजिए, ये भी धमकाने का नतीजा है।
अगर मुझे पता होता कि वो इस कदर बदकिमाश आदमी है तो मैं अपने घर और जिंदगी में बिल्कुल उसे आने नहीं देता। तुमसे मुतारिफ कराना तो बहुत दूर की बात है।
सईद ने मेरे साथ किसी किस्म की बदतमाशी नहीं की है।
खुदा खानम, तुम्हें किसी बात का पता नहीं है।
मैं सईद को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा नहीं जो सच और झूठ को खलत मलत करे और बदतमाशी करे।
सईद चला गया है।
क्या यही? मैंने खुद उससे जाने को कहा था ताकि जब तक मेरे हालात सुधर जाएं।
वो इसलिए चला गया है ताकि वापस ना आए।
ये पट्टी तुम्हें अम्मी और अब्बू ने पढ़ाई है ताकि मैं उसको अपने दिल से निकाल दूं।
भाई ये बात क्यों कहनी चाहिए? सईद पढ़ने का बहाना बनाकर तेहरान चला गया है, लेकिन हकीकत में वो अपनी खाला की बेटी से शादी कर रहा है।
सईद ने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसके इंतजार में बैठी रहूं।
सईद चाहता था हाजी हबीब का दामाद बनी ताकि रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। उसने वैसे ही तारीकी में तीर फेंका जो निशाने पर नहीं लगा।
दरअसल फौजी ड्यूटी पर जाने से पहले उन्होंने आपस में अहद किया था और वापसी पर उनका शादी करने का इरादा था।
जब उसे पता चला कि तुम हाजी हबीब की बेटी हो जिनकी शोहरत का वाजा पूरे बाजार में फैला हुआ है, तो उसने अपने तमाम अहदो पैमान भुला दिए।
उसने मुझसे कहा है कि तुमसे माजरत कर लूं।
तुम सच सच बताओ दाऊद, हकीकत में दाऊद अपनी तरफ से माजरत खाही कर रहा है, वरना सईद ने कुछ भी नहीं कहा है।
ये दिखा दो।
हुदा मेरी जान, बच्चों की सी हरकत मत करो। एक बात थी जो खत्म हो गई, चली गई। देखो मैंने अब्बा से बात की है, यहाँ तक कि अगर तुम्हें तेहरान यूनिवर्सिटी में भी दाखिला मिल जाए तो तुम चली जाओ। वो एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे और वो और अम्मी हफ्ते में एक बार बारी बारी तुम्हारे पास आकर रहेंगे। हुदा,
मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती।
हुदा सिद्ध मत करो, अपने साथ अपनी जिंदगी भी तबाह मत करो।
अगर मैं अकेली होती तो क्यों नहीं, वाकई में मुश्किल काम है। बगैर सरपरस्ती के इस तरह के मंसूबे में डर भी लगता है, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी का ज्यादातर बोझ मेरे शोहर के कंधों पर है। मेरे ख्याल से यहाँ बहुत मुनासिब मौका है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ।
क्या मैं एक खुसूसी सवाल पूछ सकती हूँ?
बिल्कुल पूछ सकती है।
अच्छा, आपके शोहर एक तरह से आपके मुलाजम शुमार होते हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि घर में बर्तन कौन धोता है।
आखिर ये कैसा सवाल है?
आप बर्तन धोने को एक मिसाल की सूरत में मद्देनजर रखें। मैं इस मौजू के बारे में आपका जवाब जानना चाहती हूँ।
मेरा और मोहम्मद हुसैन का रिश्ता बिल्कुल सरबराह और मातहत की तरह है।
माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहती हूँ। जी कौन?
सलाम।
सलाम, आइए।
मैंने देर तो नहीं कर दी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशामदीद मिसेस अंसारी, तशरीफ लाएं।
सलाम।
सलाम।
मेहरबानी करके यहाँ ना बैठे, वहाँ बैठे, क्योंकि मैं अब दोनों की आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। क्या आपको चंबा हो रहा है? इत्तेफाकन मैं भी यही चाहती थी। अब हम माँ बेटी वाला इंटरव्यू ले सकते हैं, दो कामयाब अफराद के उनवान से जो अलग नस्लों से ताल्लुक रखती हैं। अच्छी बात है, तो शुरू करते हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
आप अपनी अम्मी से सवाल पूछेंगी और वो जवाब देंगी, और अगर उनके पास कोई सवाल होगा तो वो पूछेंगी।
लेकिन तुम सवाल पूछने वाली थी।
इस तरह प्रोग्राम ज्यादा दिलचस्प रहेगा। क्यों? सवाल शुरू करें।
मैं क्या पूछूं?
अपनी अम्मी की पर्सनल जिंदगी के बारे में। ये कि उन्होंने कामयाबी की सीढ़ी पर कदम कब रखा?
आपने कब कामयाबी के जीने पर अपना कदम रखा?
16 साल की उम्र से, जब से मैंने अपनी तालीम छोड़ी। यही बुरा हादसा इस बात का बाइस बना कि मैं माजी को भुला देने और कामयाब होने के लिए संजीदगी से आगे बढ़ूं।
वाकई में आपने 16 बरस की उम्र में तालीम छोड़ दी थी?
हाँ, अलबत्ता कई साल बाद मैंने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर इंटर किया।
आपने तालीम क्यों छोड़ दी थी?
इसलिए कि शादी कर ली।
यानी आपके शौहर ने आपको पढ़ने नहीं दिया या आपने खुद पढ़ाई छोड़ दी?
जिन हालात से मैं दो चार थी उनमें पढ़ना आसान नहीं था, मैं तालीम जारी नहीं रख सकी।
पढ़ नहीं सकी या पढ़ने नहीं दिया?
नहीं मोहतरमा, मेरा शौहर अच्छा आदमी था।
माफ कीजिएगा मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, पर अगर वो अच्छे आदमी थे तो उन्होंने आपको छोड़ क्यों दिया?
कई बार अच्छे अफराद होने के बावजूद साथ नहीं रह पाते।
कमाल की बात है, आपने तालीम छोड़ दी, बच्ची पैदा की और फिर तालीम की तरफ मुतवज्जे हो गई। क्यों? वाकई में इतने सालों बाद आपके अंदर तालीम का जज्बा कैसे जागा?
मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मैंने तलाक ली। मैं सिर्फ जिस बारे में सोचती थी वो खुद मुख्तारी थी, और खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए था।
खुद मुख्तारी?
खुद मुख्तारी इसका मतलब क्या? मुखालिफ है? क्यों?
इस तंज का मतलब क्या है?
क्या आप हकीकत में अपने खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए मेरे अब्बू से अलहदा हो गई थी?
माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी फोन करना है, अगर आप इजाजत दे दें तो कर लूं। अभी वापस आती हूं।
कितना अच्छा होता कि तुम कुछ बातों की रियायत करती,
बाअदब इंसान दूसरों के सामने अपनी माँ का मजाक नहीं उड़ाते।
मेरे वालिद से अलहदा होने के बाद जिस चीज के बारे में आप सोचते थे वो खुद मुख्तारी नहीं थी, फरेब था।
तमीज से बात करो।
उसके खातिर आप मेरे अबू से अलहदा हो गई? अपने इस करतूत का क्या नाम देंगी? इस हद तक अपने आप को अल्फाज के पीछे मत छुपाएं। खुद मुख्तारी। मेरे अबू ने अगर शादी की थी तो हाजी हबीब और आपकी बेइज्जती का इजाला करने के लिए की थी। आपने इतना सताया कि वो तलाक देने पर मजबूर हो गए।
तुम्हें कुछ नहीं पता मायदा।
मैं जितना जानती हूँ वही काफी है। मेरे अबू से अलहदा होते ही आप जाकर उसके साथ रहने लगी, यही काफी है।
ये कि आपने अपनी 6 साल की बच्ची को उसकी खातिर छोड़ दिया। तुम्हें पता नहीं है मुझ पे क्या बीती है, लिहाजा बेहूदा बातें मत करो। मैं ट्रेन के जरिए तेहरान जा रही हूँ और पहली फ्लाइट मिलते ही ईरान से चली जाऊंगी।
इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? इतने सालों बाद तो आई हो, कुछ दिन और रुक जाओ।
मैं खुद भी रुकना चाहती थी लेकिन जो हालात पेश आए हैं अब मुमकिन नहीं।
उससे कहती क्यों नहीं कि कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं?
क्या फायदा, अब उसका बाप तो जिंदा नहीं है लेकिन मालूम है उसके कान भर दिए गए हैं।
कसूर हमारा भी है, हमने कभी सही बातें उसे की ही नहीं क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप के साथ रह रही थी। हम सोचते थे कि तुम भी हमेशा के लिए चली गई हो, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि बाप बेटी के बीच दरार डालें।
मैं भी इसलिए उसको कुछ नहीं कहती हूँ। मायदा को अगर हकीकत का पता चले तो उसको अपने बाप से नफरत हो जाएगी, इस तरह वो कम से कम एक ही से नफरत करेगी। बेहतर है मैं जाऊं ताकि आरश भी अपने काम निपटा सके। ये चीजें दाऊद साहब ने दी थी ताकि उनको देख लूं। मेरे ख्याल में अम्मी के डॉक्यूमेंट्स और कागजात हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मेरी तरफ से दाऊद साहब को खुदा हाफिज।
खाला तो फिर मैं इंतजार करूँ ना? आप दावतनामा तो भेजें, मैं खुद अम्मी और अब्बू को मना लूंगा आने के लिए।
ठीक है भाई।
खाला मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, आप जल्दी भेज दीजिएगा ना।
तुम बहुत अजीब बच्चे हो।
आपसे गुजारिश करता हूँ
मुझे वहाँ पहुँचने तो दो। तुम भी मोहम्मद हुसैन और मायदा का ख्याल रखना।
बेफिक्र रहें।
उनके यहाँ अगर बच्चा हो तो मुझे इत्तला देना।
अब देखते हैं कि आप अपने भांजे का कितना ख्याल रखती हैं।
बहुत ढीठ हो।
ये कागज मुझे हाजिया खानुम के डॉक्यूमेंट्स और कागजात के बैग से मिला था। मैंने मजीद से कहलवा दिया था ताकि तुम इनका जायजा लो। तुमने भी जोहरा से कहा था कि देखने का टाइम नहीं मिला लेकिन तुम्हें जाने से पहले जरूर इसको देख लेना चाहिए। लगता है निकाह के मौके पर हाजी साहब ने ये जमीनें नरगिस खानुम के नाम कर दी थी।
ये जमीनें जो आप कह रहे हैं कहाँ हैं?
मुझे भी तुम्हारी तरह इत्तला नहीं है।
मेरा वकालतनामा तो है, आपको दे देती हूँ। आप खुद उसके मामलात निपटा दें और पैसे मेरे अकाउंट में डाल दें।
इन जमीनों का रकबा बहुत ज्यादा है, तुमको मजीद 24 घंटे तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर चली जाना।
क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है जमीनें कहाँ हैं? अगर हम चाहें उनके बारे में इंक्वायरी करके उनके कामों को निपटाएं तो इसमें बहुत वक्त लगेगा।
इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो इस इलाके के पुराने क्लर्कों में से है। वो यहाँ की जमीनों के चप्पे चप्पे को जानता है। वो इस कागज को देखते ही बता देगा कि जमीन कहाँ है। बहरहाल अब तुम जानो, मैंने सोचा तुम्हें अपनी रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत होगी, शायद ये जमीनें तुम्हारे काम आ सके। और इन हिसारे विरासत के लिए तुम्हारा रहना जरूरी है।
चलिए
चलिए।
अंदाजा तो है लेकिन हुदूदी अरबा क्या है मैं सही तौर पर नहीं कह सकता, यानी वाजे नहीं है कि कहां से शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है।
कोई हर्ज नहीं है, आप सिर्फ इसका अंदाजा बता दें काफी है।
इसका अंदाजा गुलशनाबाद के यही बागात और जमीन का ही टुकड़ा है। आप तशरीफ लाएं और देखें। यहां से पुराना गुलशनाबाद गांव शुरू होता है, यहां तक पहुंचता है जो नया गुलशनाबाद है। आप मुतवज्जो हुए, ये जमीन भी यहीं पर मौजूद है।
आपको यकीन है साबरी साहब?
जी जरूर, जी जरूर। आप चाहें तो आपकी खिदमत में ले आता हूं, आप खुद ही देख लीजिए। ये लीजिए, पुराना गुलशनाबाद, नया गुलशनाबाद।
अच्छा, वो दूसरी जमीन, दूसरा प्लाट जिसके बारे में आपने कहा, वो कहाँ है?
वो भी यहीं पर है, यानी दीनी मदरसा इसी जमीन पर वाकई है।
इन जमीनों को तो बहुत अरसा पहले हमारे अब्बू ने शहीदी साहब को दे दिया था।
आपको गलत फहमी हो रही है।
मिर्जाई साहब, क्या गलत फहमी हो रही है मुझे? 40 बरसों से इस जमीन के काम में मैं मसरूफ हूँ, तो क्या मुझे गलत फहमी होगी?
ये कैसे मुमकिन है जो जमीनें मेरी माँ को हिबा करके दे दी गई थी वो किसी और को दे दी जाएं?
भाई मैं क्या कह सकता हूँ। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا